का सेशन किताबुल जुमा की कंटिन्यूशन है, हदीस नंबर 509। और किताबुल जुमा, जुमे के दिन के बारे में हमने बहुत ही खूबसूरत हदीस पढ़ी थी कि किस तरह से जुमे के दिन इख्तमाम किया जा सकता है। बेहतरीन कपड़े पहने जाएंगे और इसी तरह से मिसवाक की जाएगी। और देहातों में और दूर से रहने वालों के लिए जुमे के क्या मसाइल है, कितनी दूर से कोई आए तो उसके ऊपर जुमा फर्ज हो जाता है। ये सब चीज़ें हदीस से पढ़ने के बाद हमारे अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा हदीस की अहमियत बढ़ती है। और आखिरी हदीस जो हमने पढ़ी थी कि अपने भाई को खुद उठाकर, यानी किसी पहले से बैठे हुए शख्स को वहाँ से उठाकर खुद उसकी जगह बैठना ये पसंदीदा नहीं है। ये क्या बताता है सब कुछ कि मुसलमानों का दीन जो है ये दीनुल अदब है, दूसरे के साथ वही मामला करते हैं जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। तो आइए आज देखते हैं जुमे के बारे में हदीस नंबर 509। अल आजान यौम अल जुमा, जुमे के दिन आजान। अनि साइब इब्ने यजीद रदी अल्लाह अन्हु قال كان النداء يوم الجمعه اوله اذا جلس الامام على المنبر। हजरत साइब बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के जमाने में जुमे के दिन पहली अजान उस वक्त होती जब इमाम मिंबर पर बैठ जाते। अलाहदे नबी व अबी बकर व उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, यानी पहले तीन अदवार में इसी तरह से होता था। चेंज कहाँ आया? फलम्मा कान उस्मान रदी अल्लाह अन्हु, फिर जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आ गया। वह कसरन नासु, और लोग ज्यादा हो गए। ज़ादन निदाउल सालिसा अलज ज़ौराई, तो एक तीसरी अजान का इजाफा कर दिया गया मुकामे ज़ौरा पर। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, असल अजान तो जुमे के दिन वही है जो इमाम के मिंबर पर आने के वक्त दी जाती है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के दौर में एक ही अजान थी। हजरत उस्मान गनी ने एक खास जरूरत के पेश नजर, यानी इट वॉज टाइम बाउंड, एक और अजान का इख्तमाम किया। हजरत उस्मान की तरह जब भी जरूरत हो उस वक्त मस्जिद के बाहर अगर मुनासिब जगह पर इसका इख्तमाम किया जाए तो जायज़ है, मगर जहाँ जरूरत ना हो वहाँ सुन्नत के मुताबिक सिर्फ खुतबे ही के वक्त बावाज़े बुलंद एक ही अजान देना चाहिए। बात वाज़े? आप इसको यूं समझिए कि आज के दौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली अजान की आवाज़ भी दूर पहुंच जाती है। पहले दौर में क्या होता था कि लोग दूर दूर रहते थे, माइक्रोफोन्स नहीं थे, हो सकता है कि एक जगह अजान की आवाज आए तो दूसरी जगह ना जाए, तो जरूरत का ख्याल रखते हुए मस्जिद से थोड़ी दूर जाके एक और अजान दी जाती थी ताकि दूर वाले पास आ जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि आज के दौर में आप देखते हैं कि मस्जिदों के अंदर सबको मौजूद है। लोग अगर इंतजार कर भी रहे हैं तो आज के दौर में फिर एक ही अजान होगी, जहाँ जरूरत ना हो वहां सुन्नत के मुताबिक खुतबे के वक्त बुलंद आवाज से अजान दी जाए। हाँ, जरूरतन दी जा सकती है, मसलन सिटी से बाहर है, सफर में है, किसी भी काफिले की सूरत में है, कोई गांव है, माइक्रोफोन नहीं है, ये भी एक जरूरत है। तो ऐसे वक्त में दूर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए और इतना पहले दे देना कि वो चल के आ जाएं और मस्जिद तक पहुंच जाए नमाज तक, तो इस सूरत में अलग अजान दी जा सकती है। जुमे के दिन एक ही मुअज्जिन हो। अल मुअज्जिन अल वाहिद यौम अल जुमाति वानहु रदियल्लाहु अन्हु फी रिवायत قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد। हज़रत साहिब ही की ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी का एक ही मुअज्जिन था, और जुमे के दिन सिर्फ एक ही अजान दी जाती थी। व कान ताजीन यौमुल जुमत हीन यजलिसुल इमामु यानी अलल मिंबरी, और जुमे के दिन सिर्फ एक ही अजान दी जाती थी और वो कब, जबकि इमाम मिंबर पर बैठ जाते। तो बात वैसे सेम अमल है, एक ही अजान थी। नबी सल्लम के दौर में कई एक मौजिन थे जो अपनी बारी बारी पर अजान देते थे, लेकिन जुमे के दिन की अजान के लिए खास तौर पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को नॉमिनेट किया गया था। तो फिर यहाँ से आज भी यही अमल है। दुआ कीजिए कि आज हमें भी इन्हीं सुन्नतों को जिंदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। फिर आगे देखिएगा, यजिबुल अजान अल मिंबरी यौमल जुमा, जुमा के दिन इमाम भी मिंबर पर बैठा अजान का जवाब दे। यानी अजान तो कोई और देता है, इमाम तो वो है जो नमाज पढ़ाएंगे या खुतबा देते हैं। यहाँ से एक बात पता चली कि मौजिन और इमाम अलग अलग होते थे। दूसरी बात है कि वो भी अजान को सुनते हुए जवाब देंगे अजान का। अन मुआवित इब्ने अबी सुफयान रदी अल्लाह अन्हुमा अन्नहु जलस अलल मिंबरी यौमल जुमाती फलम्मा अज्जन अल मुअज्जिनु قال الله اكبر الله اكبر। हजरत मुआविया बिन अबी सुफयान से रिवायत है कि वो जुमे के दिन मिंबर पर तशरीफ फरमा थे तो मुअज्जिन ने अजान कही। जब मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा तो हजरत मुआविया ने भी अल्लाह अकबर कहा, और उसके बाद काल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काल मुआवियत रदी अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह काल मुआवियतु। और जब मुअज्जिन ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो मुआविया ने भी कहा कि मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो वकाल मुआवियतु व अना, यानी मैं भी इसी बात की गवाही देता हूँ। फ़क़ाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाद मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा। फ़क़ाल मुआवियतु, तो मुआविया ने कहा वह अना, यानी मैं भी ऐसे ही यही गवाही देता हूँ। फलम कदत ताज़ीन, फिर जब अजान खत्म हो गई, काला, तो मुआविया ने कहा या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़ल मजलिसी, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी मुकाम पर सुना है। हीन अज़न अल मुअज़्ज़िनु, जब मुअज़्ज़िन ने अजान दी, यकूलू, तो आपने कहा मा समेतुम मिन्नी मिम मकालती, यानी आप भी वही फरमाते थे जो मुझसे कहते हुए सुनते थे। क्या पता चला कि नबी सल्लम से इसी मुकाम पर सुना कि जब मुअज़्ज़िन ने अजान दी तो आप भी वही फरमाते थे। तो क्या पता चला इससे? पहली बात है कि बास लोग कहते हैं कि खुतबा देने से पहले मिंबर पर आकर बैठना नहीं जायज खतीब का, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इमाम बुखारी के हदीस को यहाँ लाने से ये भी पता चलता है। और दूसरा बात कि खुतबा शुरू करने से पहले गुफ्तगू जायज है, यानी अब ये जवाब दिया जा रहा है तो ये एक मस्तून अमल है। फिर अल खुतबतु अलल मिंबर, खुतबा मिंबर पर देना। अब आप देखिए लफ्ज खुतबा के डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होंगे। अगर आप खुतबा कहें तो वही है जो आपके सामने है, अगर आप इसको खितबा कह दें तो क्या होगा? जी, मंगनी को कहते हैं। खातिब, खिताब, मुखातिब, मुखातब, यानी मंगनी भी एक किस्म की किसी से बातचीत होती है, उसमें आप खिताब करते हैं और दूसरा बंदा उसका जवाब देता है। तो प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त होना चाहिए हमारा। तो खुतबा मिंबर पर दिया जाएगा। हदीस सहलिफ ने सादिन फी अम्रिल मिंबरी تقدم وذكر صلاته عليه ورجوعه الكحكري وزاد في هذه روايتي فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتتموا ولتعلموا صلاتي। حضرت سهل کی روایت اوپر گزر چکی ہے جو ممبر کے بارے میں تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پر نماز پڑھنے پھر الٹے پاؤں نیچے اترنے کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بات بڑھائی گئی کہ آپ فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے اس لیے ایسا کیا کہ تاکہ تم میری اقتداء کر کے میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ تو کیا پتہ چلا کہ مقتدیوں کو نماز کی عملی تربیت دینی چاہیے، یعنی اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی خلاف عادت کام کرے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے، یعنی صحابہ نے پوچھا نہیں، آپ نے خود ہی بتا دیا۔ تو ایک اچھا ٹیچر اور انسٹرکٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو پہلے سے بتا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یعنی کوئی کام کر کے ایک دم لوگوں کے ذہنوں میں کوسچن مارک نہیں چھوڑتا، بلکہ بتا دیتا ہے کہ آج میں نے یہ انیوژل بات اس لیے کی۔ اسی طرح تبرانی کی روایت میں کہ آپ نے اس پر لوگوں کو خطبہ دیا پھر وہیں نماز ادا کی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خلاف عادت کام کرنے کے بعد इसकी हिकमत बयान करनी चाहिए। यहां से देखिए कि नबी सल्लम का दूसरों को सेटिस्फाइड करना कितना साबित होता है। जब तक आप दूसरे के जज्बात और उसके इमोशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, दूसरा बंदा आपसे कभी भी मुतमईन नहीं होगा। मसलन बात सिर्फ हम अपने बच्चों ही को बात करते, चुप चुप, कोई जरूरत नहीं पूछने की, खामोश, मेरी मर्जी। अच्छा, वो पूछ रहे हैं, आप बड़े बनते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है मुझे कुछ पूछना ही नहीं, मैंने बताना ही नहीं। तो देखिए, लोगों में जीना चाहिए, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दूसरा इंसान ये ना समझे कि वो किसी पत्थर से बात कर रहे हैं। बस सब हम इस तरह से अपने हाल में मगन होते हैं, और आज जितना ज्यादा गैजेट्स आ गए हमारी जिंदगियों में, उतना हम इंसानों से बेनियाज हो गए। बस दफा दूसरे की मौजूदगी का भी एहसास नहीं होता। तो ये भी हमें इंसानी मामलात नबी सल्लम से सीखने हैं कि आप किस तरह से लोगों का जहन पढ़ लेते थे। और याद रखिए, दूसरे लोग आपसे तभी खुश होंगे जब आप उसको जहनी तौर पे बराबर लेके चलेंगे, वरना आप अपने घर खुश, अगला अपने घर खुश। आज आप देखिए कि इंसानी मामलात में कम्युनिकेशन इतना बैड हो गया, जितना मशीनें आम है, गैजेट्स आम है, उतना इंसानों के जज्बात नहीं लोग समझ पाते कि दूसरा इंसान उससे क्या चाहता है। तो ये चीज भी नबी सल्लम के अमल से हमें मिल रही है। फिर इसके बाद आप देखिए अगली हदीस में, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा قال كان جز يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ودي له المنبر سمعنا للجز مثل اصوات الاشعار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا يده عليه। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, एक खजूर का तना मस्जिद में था जिस पर टेक लगाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे, और जब आपके लिए मिंबर रखा गया तो इस तने से हमने 10 माह की हामिला ऊंटनियों के रोने जैसी आवाज सुनी। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और इस तने पर अपना दस्ते मुबारक रखा। इसी तरह निसाई की रिवायत में इतना इजाफा है कि इस जुदाई की वजह से तने पर लर्जा तारी हो गया था, इस तरह रोने लगा जैसे गुमशुदा बच्चे वाली ऊंटनी रोती है। और ये नबी सल्लम का मौजजा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने वाले मौजजे से भी बढ़ के। आप इमेजिन करिए, बैठे हैं और एकदम मिंबर में से आवाजें आ रही हैं, दरख्त में से आवाजें आ रही हैं, क्या पता चला इनके पास भी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये हमें बता नहीं सकते, हम इनकी समझ नहीं सकते। और ये नबियों को अल्लाह ताला ने मौजजात दिए होते हैं कि जिसमें वो फिर ऐसी चीजों को करते हैं। तो क्या यहाँ से एक ये सवाल बनता है कि हम में से भी कोई कह सकता है कि हाँ जी फलां दरख्त रो रहा था, मैंने उसको जाके मुंह लगाया? नहीं, ये उस नबी के साथ ही मुकर्रर है जिसको अल्लाह ताला बाज़ दफा ऐसी गैब की चीजें दे दिया करते थे जो कि दूसरे लोगों को नहीं पता होती। फिर उसके बाद खड़े होकर खुतबा देने की बात, अल खुतबतु क़ाइमन अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा दिया करते थे, सुम्म यक़ुदु फिर बैठ जाते, सुम्म यक़ूमु फिर खड़े हो जाते, कमा तफ़अलून अलान जैसे कि तुम आज करते हो। ये चीज तो आपने भी देखी होगी, अगर आपको जुमे की नमाज के दौरान स्क्रीन के थ्रू या ग्लासेस के थ्रू दिखने का इत्तेफाक हुआ हो तो आज भी इमाम इसी सुन्नत को पूरा करते हैं कि बीच में थोड़ी देर बैठते हैं फिर उठते हैं, तो बाज तो उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करके समअप करते हैं और बाज उसके बाद सिर्फ अरबी की आयात पढ़ते हैं या कुछ और कलिमात। तो अगर पूरा खुतबा बैठ के देना होता तो बीच में उठ के बैठने की क्या बात थी। आज भी आपका तो एक बड़ी मशहूर मसलक है जिनके लोग बैठ के खुतबा देते हैं, तो बैठकर जुमे का खुतबा देना जायज होता तो दोनों खुतबों के दरमियान बैठने की कोई हकीकत नहीं थी। और कुरान पाक की भी तो आयत है ना सूरह जुम्मा की कि वतरकू का क़ाइमन, कि वो आपको खड़ा छोड़ देते हैं। तो ये तो बुखारी में हम पढ़ रहे हैं, कुरान में भी मौजूद है सूरह जुम्मा में कि अल्लाह के नबी खड़े होकर खुतबा दे रहे थे और बीच में जब कोई ऐसा काफिला आ गया जिसका बहुत दिनों से इंतजार था तो सहाबा चले गए और आप खड़े रह गए। तो बहरहाल जुमा का खुतबा खड़े होकर देना चाहिए। आज अक्सर मस्जिदों में अजीब व गरीब चीजें देखी हैं जुमे की नमाज से, अल्लाह ताला हम सब की इसलाह फरमाए। बाज़ तो जुमे को इतना लेट पढ़ते हैं कि उसके साथ ही असर की नमाज भी करवा देते हैं। फिर इसी तरह शुरू में एक घंटे का दर्स पूरा बैठ के उसको बयान का नाम दे देना और खुतबा वही जो खड़े होके बस 5-4 मिनट अरबी में पढ़ना, ये एक्सट्रीम है। दोनों चीजों के बीच में दुरुस्त तरीका क्या है जुमे के लिए, कि जुमे का खुतबा मुख्तसर और दिलसोज होना चाहिए, आखरत और जिंदगी की हकीकत पे मुतल्लिक हो, आम फहम बातें हो, टू दी पॉइंट हो, और लोगों को हर वीक एक रिमाइंडर मिल जाए। और उसको उसी जुबान में देना चाहिए जहाँ के लोग ज्यादा मौजूद हो। बीच में अरबी की कुछ चीजें आयतें या दुआएं हैं वो और चीज है, लेकिन अगर खुतबा समझ ही ना आएगा तो फिर लोगों को जुमे की नमाज में भी जाकर वो रूहानियत नहीं मिलेगी जो कि मिलनी चाहिए। फिर आगे देखिए, मन काल फिल खुतबती बाद सनाई अम्मा बाद, खुतबे में सना के बाद, सना कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ, अम्मा बाद कहना। अन अमर इब्ने तगलिब, हजरत अमर बिन तगलिब से रिवायत है रदी अल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया बिमाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल या गुलाम लाए गए, औ बिसवीयन फकसमहु, यानी कुछ माल था, अब सबीश कहते हैं गुलामों को, गुलाम लाए गए जिसको आपने तकसीम कर दिया, फातर रिजालन व तरक रिजालन, कुछ को आपने दिया और कुछ को ना दिया, फबलगहु अन्नल्लज़ीन तरक अतबू, फिर आपको ये इत्तला मिली कि जिनको आपने नहीं दिया वो नाखुश है, यानी एक इंसानी फितरत है कि जिसको नहीं मिला वो नाखुश हो गया होगा। फहमिदल्लाहु सुम्मा अस्ना अलैह, फिर आपने अल्लाह की हमद व सना के बाद फरमाया, सुम्मा काला, फिर फरमाया, अम्मा बाद, अम्मा बाद यानी इसके बाद, फवल्लाही इन्नी लाउती रजुला वादाउर रजुला, मैं किसी को देता हूं और किसी को नहीं देता। हाँ, ये आपने किया भी और कह भी दिया कि हाँ ऐसा है। वल्लज़ी यदा अहब्बु इलैया मिन अल्लज़ी उती वलाकिन उती अक्वाम लिमा अरा फी कुलूबिहिम मिन अल्जज़ई वल खलई, फरमाया, लेकिन जिसको छोड़ देता हूँ वो मेरे नजदीक इस शख्स से ज्यादा अजीज होता है जिसको देता हूँ, नीज कुछ लोगों को इसलिए दे देता हूँ कि वो बेसब्री और बुखलाहट देखता हूँ, इसी तरह से यानी मैं उनके अंदर थोड़ा बुखलाहटपन देखता हूँ। वह अकीलु अखवाम अनिला मा जाल्लाह फी कलूब मिन अलगिनम वल खैर, और कुछ को इनकी सैर चश्मे यानी तबीयत का भरा होना और भलाई के सबब, यानी उनके दिल में कोई तलब नहीं, हिर्स नहीं, लालच नहीं, ग्रीट नहीं है और भलाई देखता हूँ उनके दिल में, तो इसलिए उनको नहीं देता, छोड़ देता हूँ। फी अमर इब्ने तगलब, और इन्हीं में से एक अमर बिन तगलब भी थे। फवल्लाहि मा उहिब्बु अन्नली बिकलिमति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमरन नाम, अमर बिन तगलब कहते हैं, अल्लाह की कसम ये मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के रसूल के इस कलमे के एवज मुझे सुर्ख ऊंट भी मिले। सुभान अल्लाह, कितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी तबीयतों को जानने वाले थे। तो इस हदीस से एक तो ये पता चला कि जरूरी नहीं आप जिनको देते हैं वो आपको ज्यादा अच्छे लगे, बल्कि अपोजिट भी होता है, जो आपके अपने होते हैं आप कहते हैं ठहर जो इनकी खैर है और इसको बाद में दे दोगे, इनको ना भी मिला, और कुछ होते हैं जिनको आपने अपना बनाना होता है उनको कहते नहीं इनको जरूर देना, और कुछ के फितने से और उनकी जुबान की तेजी और उनकी बातों की आदत से इनको प्लीज दीजिए, इनको खाना खिला के भेजिएगा, अगर ये भूखे गए तो सारे शहर में शोर मच जाएगा, खाना नहीं था, राइट। तो जब कोई ज्यादा दे तो जरूरी नहीं कि वो खुश हो, और याद रखिए कि अल्लाह ताला की भी यही सुन्नत है, जरूरी तो नहीं कि दुनिया में जिनको ज्यादा दिया गया अल्लाह ताला उनसे ज्यादा खुश है और जिनको नहीं दिया गया अल्लाह ताला उनसे खुश नहीं है। तो देने या ना देने का ताल्लुक इन दोनों चीजों से नहीं है। फिर इसमें से इमाम बुखारी ने एक और चीज बताई और वो कहे कि खुतबे में अम्मा बात कहना भी सुन्नत है। हजरत दाऊद के मुतालिक कुरान पाक में कि इनको फसलुल खिताब से नवाजा गया था, इसका भी तकाजा है कि अल्लाह ताला की हमदो सना को अपने असल खिताब से अम्मा बात के जरिए अलग किया जाए, यानी अल्लाह की तारीफ करके फिर कहा जाए अब इसके बाद, अम्मा बात का यही मतलब है ना कि इसके बाद। निज इस हदीस से आपके खुल्क अजीम का भी पता चलता है कि आपको ना तो किसी की नाराजगी गवारा थी और ना ही आप किसी की दिल शिकनी करते थे, और ये भी मालूम हुआ कि सहाबा कराम को आपसे दिली मोहब्बत और कल्बी ताल्लुक था। तो दुआ कीजिए कि आज भी हमारे अंदर वो खूबियां पैदा हो जाएं कि हमारा दूसरों के साथ दिल का ताल्लुक हो। और इससे एक और बात पता चलती है कि लीडर से बदगुमान नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी एक लीडर भी थे, एक मुरब्बी थे, मुजक्की थे, मुअल्लिम थे, मुदर्रिस थे। तो आप अगर किसी को कम दे दें, दूसरे को ज्यादा दे दें, तो सहाबा ने इसकी वजह से ग्रुप विद इन ग्रुप नहीं बना लिए और बातों के तूफान नहीं खड़े किए। तो लिहाजा दिल खुले होने चाहिए, जुबानें छोटी हों, दिल खुले हों, तो फिर बेहतरीन ताल्लुकात निभाए जाते हैं। फिर इसी तरह नबी हुमैद साअदी रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम अशियतन बाद सलाती फहमिद अल्लाह ताला वसना अलल्लाही बिमा हुआ अहलुहु थुम्मा काल अम्मा बादु। अबू हुमैद साअदी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज के बाद खड़े हो गए, अल्लाह ताला की ऐसी हमदो सना बयान की जो इसके लायक है, फिर फरमाया अम्मा बाद, अब ये आपको इस अंदाज से भी लगा होगा कि ये हदीस का टुकड़ा है, ठीक है, पूरी बात नहीं है, इसके आगे भी कोई बात हुई होगी, इसके पीछे भी कोई बात हुई होगी। फिर तीसरी चीज इसमें एक और पता चलती है कि जब भी कोई बात पेश की जाती है तो उसके अंदर से जितनी चीज में कोई अमल की बात हो सिर्फ उसको भी पेश किया जाता है। ये एक तवील टुकड़ा जिसे इमाम बुखारी ने कई जगह पेश किया, इसकी असल में बात क्या थी कि अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। जब वो वापस आए तो चंद एक चीजों के मुतल्लिक कहने लगे, ये तो मुझे तोहफे में मिली है। किस वक्त आपने ईशा के बाद खुतबा इरशाद फरमाया कि सरकारी सफर में तुम्हें जाती तहाइफ लेने का कोई हक नहीं, जो भी वसूल हुआ हो इसे बैतुल माल में डाल दो। क्या पता चला कि अगर घर बैठे रहते तो ये सब ना मिलता ना। तो ये एक साइड इशू है, लेकिन हकीकत है कि जब दीन के काम हो या इज्तमाई काम हो तो उसमें इंसान को जाती तौर पर ऐसी चीजों के लेन देन से इज्तनाब करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि जिसकी वजह से बाद में कोई दूसरा अच्छी उम्मीदें लगाकर कोई कानून करवा ले। बस आप देखिए कि कोई किसी जगह ऑफिस वालों से दोस्ती करे, उनको लाकर गिफ्ट दे दे और बाद में कहे अच्छा चलो मेरी रोल का लगा देना, चलो मेरी फीस को ऊपर करो। दीन के मामलों में तो कोई नहीं करता ऐसा, लेकिन शैतान और नफ्स तो साथ ही है, तो लिहाजा फितनों के दरवाजों को बंद कर देना चाहिए। अगली रिवायत देखेंगे, अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा काला सईदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबर व कान आखिर मजलिसिही जलसहु मुतअज्जी मुतअत्तिफन मिलहफत अला मन की बही ही कद असब रसहु बी इसाबतिन दसीमतिन फहमिद अल्लाह वस्ना अलैहि थुम्मा काल। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए, वो आखिरी नशिस्त थी जिसमें आप अपने शानों पर बड़ी चादर डाले हुए थे, सर पर चिकनी पट्टी बांधे हुए थे। आपने अल्लाह तआला की हमदो सना के बाद फरमाया, अय्युहन्नास इलैया, ए लोगो मेरे करीब आ जाओ। फसाबू इलै थुम्मा काला, जब लोग जमा हो गए करीब आ गए तो आपने फरमाया, अम्मा बाद, क्या कहा, फइन्ना हाज़ल हय्य मिनल अंसार, फरमाया कि सुनो दीगर लोग तो बढ़ते जाएंगे मगर कबीला अंसार कम होता जाएगा। यकिलून व यकसुरु नासु, यानी दिन ब दिन दुनिया में अंसार कम होंगे और आम लोग बढ़ते जाएंगे। फमन वली शैयन मिन उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्तता अन यदुर फीही अहदन औ यनफा फीही अहदन फल यकबल मिन मुहसिनिही व यतजावज अन मुसीइहिम। फरमाया अंसार कम होंगे, पस उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से जो शख्स किसी भी शक्ल में हुकूमत करे जिसकी वजह से दूसरों को नफे या नुकसान पहुंचाने का इख्तियार रखता हो तो इसे चाहिए कि अंसार के खूब कारों की नेकी कबूल करे और खता कारों की लफ्जिशों से दरगुजर करे। ये होती है नेकी और ये होती है कदरदानी। अंसार मदीना ने एक बार नेकी कर ली, मक्का से आने वालों के हाथ थाम लिए तो पूरी अपनी तारीख के अंदर एक सुनहरी बाब रकम कर दिया और उनके एहसान को अल्लाह के नबी भूले भी नहीं, मुहसिन बना दिया उनको और उनकी इज्जत और एहतराम करना हर मुसलमान पर लाजिम कर दिया। अब आपको हसरत होगी, हाय वो कितने खुशकिस्मत थे, हाय मक्का से लोग आए तो उन्होंने उनको सहारा दिया तो फिर वो अंसारे मदीना बन गए। हम होते तो कितने खुशकिस्मत होते। नहीं, आप आज के दौर के अंसार बनिए। देखिए हर दौर का अंसार महाजिर मुख्तलिफ होगा, और कुछ नहीं तो आज के दौर के अनसार तो वो लोग हैं कि जो पहले से दीन में घड़ चुके हैं, जिनको दीन समझ आ गया, जिनके घरों में अब ये चीज एक्सेप्टेंस के दर्जे पे पहुंच गई। अब कोई नए नए दीन में आने वाले लोग हैं, आपकी न्यू फ्रेंड्स हैं, कोई नए साथी हैं, उनको थामिए, क्योंकि आज जब एक दीन की तरफ कोई बंदा आता है तो बहुत सारी मोहब्बतों को छोड़कर कुर्बानियां करके हिजरतें करता हुआ आता है। और वैसे भी हर दौर में अब देखिए दीन के नाम पे लोग सताए जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में भेजे जाते हैं, आज भी ऐसे कई शोरगुल गुलगुले होंगे, तो जिस हद तक मदद कर सके ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर आगे देखिए, इज़ार ऑल इमाम रजलन जा वहुवा यख्तुबु अमरहु अन युसल्ली रकअतैन, जब इमाम दौरान खुतबा किसी को आता देखे तो दो रकत पढ़ने का हुक्म दे। यानी खुतबा देने के दौरान भी इमाम ये मैसेज पास कर सकता है अगर किसी को देखे कि वो बैठ गया आते ही, जिससे ये भी पता चलता है कि वे दो रकत पढ़ना खुतबा शुरू होने से पहले जरूरी है, कि हत्ता कि अगर कोई नहीं पढ़ता तो इमाम उसको कह सकता है। हदीस देखते हैं, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हुमा काला जा रजुलुन वन नबी यख्तुबु अन्नास यौमल जुमाती। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जुमे के दिन एक शख्स इस वक्त आया جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے فقال اصلیت یا فلان, تو آپ نے پوچھا ہے فلان شخص تو نے نماز پڑھ لی, وہی اشارہ ہے دو رکعت پڑھنے کی طرف. قال لا, اس نے کہا نہیں. قال قم فرقہ, کہا کھڑے ہو جاؤ اور ادا کرو. تو کیا پتا چلا کہ اس کو پڑھو. اور مسلم کی روایت میں تھا کہ آپ نے اس کو ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوران خطبہ بھی تحیت المسجد کے نفل پڑھنے چاہیے, اور ضرورت پڑنے پر امام اس قسم کی چھوٹی موٹی نصیحت کر سکتا ہے. ہاں, یہ یاد رکھیے کہ خطبے کے دوران آپ میں نہیں بول سکتے, آگے آئیں گی باتیں اس پہ, لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اس کے اوپر کچھ کم ہی عمل کر پاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزوں کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہر جمعے کو اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ دل جلا کے لے کر آتے ہیں, اور وہاں جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. میں تو ہر دفعہ یہ سوچتی ہوں یہ سب مسائل مسجدوں میں دیواروں پر لکھے ہوئے ہونے چاہیے خوبصورت طریقوں سے, تاکہ لوگ ان کو پڑھیں, اور یہ بھی ایک قسم کی تربیت اور تعلیم کا ذریعہ بنے گا. پھر آگے دیکھیے گا, الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعۃ, خطبہ جمعہ کے دوران بارش کے لیے دعا کرنا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اصابت الناس سنتو علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم جمعۃ قام عربی فقال یا رسول اللہ حلق المال وجع العیال. اب دیکھیے ان کی زبان میں فلوئنسی کتنی تھی, پورا شیری وزن لگتا ہے. پھر فد اللہ لنا فرفع یدیہ وما نرى فی السماء قزعتا فوالذی نفسی بیدیہ ما بدعوها حتی سار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتی رعیت المطر یتحادر علی لحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم فمطرنا یومنا ذالک یومنا ذالک فمطرنا یومنا ذالک ومن الغدی وبعد الغدی والذي يديه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي وقال غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الواد القناة شهرا ولم يجي احد من ناحيتي الا حدث بالجود. یہ پوری حدیث میں نے ایک ساتھ پڑھی, میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہی تھی کہ عربی زبان میں کتنی فلوئنسی ہے. اور یقین کریں کہ عربی پڑھیں تو پھر بیچ میں روکنے کو دل نہیں کرتا, لفظ توڑتے ہیں نا تو اس کا حسن ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے والا بھی بنائے اور سمجھنے والا بھی بنائے. اب اس پوری حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں اکٹھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول, مال تلف ہو گئے یعنی ختم ہو گئے. حلق المال وجاء العیال, دیکھیے کتنا حسن ہے نا, حلق المال وجاء العیال, یعنی مال تلف ہو گیا, بچے بھوکے مرنے لگ گئے, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. تو آپ نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے. اس وقت آسمان پر ابر کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا, یعنی دھوپ تھی, بالکل کلیئر اسکائی تھا. مگر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے بھی نہ کر پائے کہ پہاڑوں جیسا بادل گھرایا, اور آپ ممبر سے بھی نہ اترے تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی مبارک پر بارش کو ٹپکتے دیکھا. سوچئے ذرا کیسے ویژولاز کریں ذرا اس کو, دھوپ ہے اور نبی کی دعا اللہ کی نظر میں اتنی اہم ہے. اور میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ یہ نبی اگر مال مانگتے تو مال بھی ایسے گرتا ان پہ, بیٹے مانگتے تو بیٹے بھی ملتے. تو اللہ جب بارش دے سکتا ہے, رحمت برسا سکتا ہے, تو دوسری دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کیا, اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے میسیجز ہیں. خیر پھر کیا ہوا کہ اٹھے بھی نہیں تو بارش ہوئی اور داڑھی تک بھیگ گئی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی کی داڑھی ہوتی ہے, وہ کلین شیف پرسن نہیں ہوتا. ہاں خیر, اس دن خوب بارش ہوئی, دوسرے تیسرے پھر چوتھے دن تک, یہاں تک کہ دوسرے جمعے تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد وہی عرابی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا. اب آپ دیکھیے کہ پہلے کیا کہہ رہا ہے, اس کے اوپر کے لفظ ذہن میں لے آئیے دوبارہ. پہلے کہہ رہا حلق المال, یعنی پہلے اس کی یہ خواہش تھی کہ بارش ہو, اور اب ہو گئی ہے. تو اب کیا کہتا ہے آکے, اللہ کے نبی کیا ہو گیا, مکانات گر گئے, مال غرق ہو گئے, اس لیے آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ ہمارے آس پاس بارش برسا مگر ہم پر نہ برسا. फिर आप इस वक्त अबर के जिस टुकड़े की तरफ इशारा फरमाते वो हट जाता, आखिरकार मदीना तालाब की तरह हो गया और वादी कनात महीना भर खूब बहती रही। जिस तरफ से भी कोई शख्स आता वो बारिश की कसरत बयान करता। सुभान अल्लाह, तो उसी नबी की आज उम्मत है। दुआ करें कि अल्लाह हमारी दुआओं में भी खैर डाल दे। तो इससे क्या पता चला कि खुतबे के हालत में इमाम कोई अवामी जरूरत की दुआ कर सकता है, दुआ की दरख्वास्त भी की जा सकती है और वो उसको पूरा भी कर सकता है। फिर इसी तरह आप इसमें दुआओं की कबूलियत के ऊपर भी सोचिए। लेकिन याद रखिए कि नबी ने खुद मांगा अल्लाह से, ये नहीं कहा मुझे मिल गया मैं कर लूंगा, हो गया हो गया, नहीं, नबी भी अल्लाह से मांगते थे। फिर आप देखिए कि नबी के मांगने का अंदाज देखिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ये नहीं कहा रब्बे इब्राहिम रब्बे जिब्राइल, नहीं, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह। तो नबियों के दुआ मांगने के तरीके में भी हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। फिर इसी तरह अल इंसातु यौमुल जुमाति वल इमामु यख्तुबु, जुमे के दिन दौरान खुतबा खामोश रहना। मेरे और आपके लिए इस टॉपिक का बहुत ही अहम मौजू ये है, क्योंकि हम लोग अक्सर जुमा पढ़ाते तो नहीं, खुतबा पढ़ाते तो नहीं, नाम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम सुनने तो जाते हैं। तो खुतबा पढ़ाने वाले तो आलिम होंगे, वो तो इंशाल्लाह इन हदीसों को पढ़ ही लेंगे। आम करने की जो बात है वो ये हदीस है, क्या, आइए देखिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ुलत लिसाहिबिका यौमल जुमाती अनसित वल इमामु यख़्तुब क़द लगौत, क्या कहा आपने कि जुमा के दिन जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो अगर तूने अपने साथी से कहा कि खामोश हो जा तो बेशक तूने खुद एक लव हरकत की है। सुभान अल्लाह, देखिए किसी को ये कहना खामोश हो जाओ अगर लव है तो बात करना कितनी बड़ी बात है, ठीक है। हाँ, क्या करना है, आप देखिए, मिसाल है कि कोई ऐसी चीज है, कोई कीड़ा आ गया, कोई जानवर है, कोई ऐसी चीज है, या कोई नबीना शख्स मस्जिद में दाखिल हो रहा है तो आप उसकी मदद करते हैं, तो हतुल वसा खामोशी के साथ मदद करें, इशारों से काम करें लेकिन बोलना नहीं। और अल्लाह हिदायत दे हमारी बहनों को जिनको कभी इंग्लिश नहीं समझ आती तो कभी अरबी नहीं आती, और अगर उर्दू आती भी है तो वो बोलती रहती। इतने तमाम से घर से सफेद जोड़ा पहनकर चिकन की सुराखों वाली चादर लेकर वो नहा धो के आती हैं मस्जिदों में कि अब जुमा पढ़ने जा रहे हैं, और आके बातें शुरू हो जाती हैं। मैंने बाज लोगों को देखा खुतबे के दौरान पीछे बैठ के कुरान पढ़ते रहते हैं, दुरुस्त तरीका नहीं है। तो ये चीजें आम करने की जरूरत है और ये एजुकेशन से ही आम होंगी। अब आप में से कोई ये काम करे जुमे के वो मसाइल जो अमूमी नौयत के उनको अलग कीजिए, सिस्टर ईमान को पकड़ें, कोई बैकग्राउंड लें और उसके ऊपर कोई इस तरह से चीजें लिखवा कर हम इस तरह के कार्ड छपवा सकते हैं जिसमें सफ के मसाइल, जुमे के मसाइल। एक मेरी बड़ी ख्वाहिश है, जब भी कभी किसी मस्जिद में देखती हूँ तो दिल में ख्याल आता है कि हम नमाज के बाद के अज़कार का एक लंबा चार्ट बनवाएं। प्योर सदका जारिया भी और नमाजों में बिल्कुल सामने लगे होते हैं, कुछ जगहों पे मैंने देखे हैं, या अगर कभी कोई सऊदी अरब जाता है तो वहां से भी ले आता है, तो कुछ इस तरह से अच्छे अंदाज से बने हों कि उसमें थोड़ी सी उर्दू या इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी हो, तो बड़े बड़े साइज के मुख्तलिफ मस्जिदों में हम लगवाएं। एक तो दावा का तरीका भी है और दूसरे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी इसमें हिस्सा होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें दूसरों से शेयर करनी चाहिए। फिर एक और बड़ी खूबसूरत रिवायत, असात उल्लती फी यौमिल जुमाती, जुमे की एक घड़ी जिसमें दुआ कबूल होती है। वन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कर यौमिल जुमाती, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने जुमे के दिन दौरान वाज फरमाया, क्या फरमाया, فقال فيه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه وأشار بيده يقللها, क्या फरमाया आपने कि जुमे के दिन दौरान इकबास फरमाया कि इसमें एक ऐसी घड़ी है कि अगर ठीक इस घड़ी में मुसलमान बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से कोई चीज मांगे तो अल्लाह ताला इसको वो चीज जरूर अता करता है। आपने अपने हाथ से इशारा करके बताया कि वो घड़ी बहुत थोड़ी देर के लिए आती है। बाज जगह तो इस घड़ी की हद कर दी, तहदीद क्या होती है, हद बंदी, यानी उसको बांध दिया कि वो इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज से फारिग होने तक है, तो बहुत थोड़ी सी होती है ना, तो ऐसी चीजों का एहतमाम कर लेना चाहिए। जब ये थोड़ा सा वक्त शऊर से गुजारेंगे, दुआएं मांगेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। इज़ा नफर अन्नास व अनिल इमाम फी सलातिल जुमा, अगर नमाज जुमा में कुछ लोग इमाम को छोड़कर चले जाएं तो बाकी मुक्तदियों की नमाज सही है। اب یہ وہی واقعہ آ رہا ہے جو سورہ جمعہ میں. عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال بینما نحن نصلی مع نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت ایرو تحمل تعامن فلتفتو الیہ حتی ما بقی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اثنا عشر رجلا فنزلت ہاذہ الایت واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہ وترکوک قائما. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ نماز کے انتظار میں خطبہ سننے میں مصروف تھے کہ چند اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے. لوگ ان کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ رسول اللہ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, اور جب لوگ کسی سوداگری یا تماشے کو دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر دوڑ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اگر کچھ چلے گئے باقی ہیں تو جمعہ ہوگا اور امام نماز کرے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کتنی تعداد ہے کیا ہے, تو اس حدیث سے امام صاحب یہ ثابت کرتے ہیں کہ بعض لوگ صحت جمعہ کے لیے حاضرین کی تعداد کے لیے کچھ شرائط لگاتے ہیں, جی کم سے کم اتنے لوگ ہوں گے تو جمعہ ہوگا وٹ ایور. ایسا نہیں ہے, صرف اتنی تعداد ہے جس کو آپ جماعت کہہ سکتے ہیں. اگر امام اکیلا رہ جائے تو پھر جمعہ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیے کئی ایسی جگہیں, آج بھی ہم نے خود کئی دفعہ ایئرپورٹس پہ جمعے کی نماز پڑھی ہے, خود ہی انہوں نے خطبہ دیا پھر نماز پڑھ لی ہم نے. تو حالات اور واقعات کے مطابق ہوگا, لیکن عام طور پہ اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ جس سے جماعت ہو سکے. الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلہا, جمعہ سے پہلے اور بعد نماز پڑھنا, یہ بڑا اہم ہے, اس کو غور سے سنیے گا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی, حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے نماز. قبل ظہر رکعتین, ظہر سے پہلے دو رکعتیں, و بعدہا رکعتین اور دو اس کے بعد, و بعد المغرب رکعتین فی بیتہ اور مغرب کے بعد دو رکعتیں اپنے گھر میں, و بعد العشاء رکعتین اور عشاء کے بعد دو رکعتیں. وکان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرفوا, اور جمعے کے بعد وہ کچھ نہ پڑھتے تھے البتہ جب گھر واپس آتے, حتی ینصرفوا فیصلی رکعتین, تو پھر دو رکعتیں پڑھا کرتے. کیا پتہ چلا, جمعے سے پہلے نوافل پڑھنے کی حد بندی نہیں ہے, البتہ جمعے کے بعد اگر مسجد میں ادا کرے تو گفتگو کر کے یا تھوڑی دیر جگہ بدلنے کے بعد چار رکعت بھی پڑھے, اور گھر میں ادا کرے تو دو رکعت پڑھے. ہمارے اس پہ بھی بڑی شدت ہے, بعض دفعہ نفلوں کو سنتوں کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے, بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ اوپر لیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے بہت کلیئرلی یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے دو رکعتیں, یہ کون سی تھی, جو مسجد میں جا کے پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, پھر دو رکعتیں بعد میں پڑھتے تھے, مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی دو تھی, لیکن جمعے کے دن کچھ نہیں پڑھتے تھے جب گھر واپس آتے, یعنی دو رکعت آپ نے جا کے ہلکی سی پڑھی اور بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, اب آپ ویسے مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ کو استخارے کے نفل کچھ بھی آپ کا دل ہے پڑھیں, لیکن سنتوں کی نیت سے آپ نہیں پڑھیں گے جب تک کہ اذان نہیں ہو جائے گی, پھر گھر آ کر دو رکعتیں ادا کریں گے. ٹھیک ہے, تو اگر مسجد میں بھی پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کر لیں, دعائیں کر لیں, پھر چار رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسے معاملات میں شدت نہیں برتنی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین کی خوبصورت روح عطا فرمائے, اور ہم اپنے دین کو اتنے پیارے طریقے سے لے کر چلیں کہ جس کے بعد ہمیں واقعی اس کو اپنانے کی خوشی بھی ملے اور ہم اس پر عمل لیں کریں. الحمدللہ ہمارا کتاب الجمعہ پورا ہوا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.